جنات کو مختلف آگ کے مختلف فلیمز کی کیفیات سے بنایا گیا ہے. اگر آپ تفسیر پڑھیں, بعض سکولرز کہتے ہیں کہ ان کو ریڈ فلیم سے بنایا گیا, بعض کہتے ہیں بلو سے, بعض کہتے ہیں اورنج سے, بعض تو کہنا ہے ان سب کے مکسچر سے جنات بنے ہیں. فلیم سے نہیں, بلکہ فلیم کے اوپر بھی جو ایک آپ کو ہیٹ سی نظر آ رہی ہوتی ہے, ممارج مکسچر سے اس کے بنے ہیں. جنات کے بارے میں ہمیشہ سے آڈینس بہت انٹرسٹ لیتی ہے جب آپ جنات پر بات کرتے ہیں. اچھا اچھا آپ کیا بتائیں گے, اس لیے کہ جنات پر فوک لورز بہت ہیں, کہانیاں بہت ہیں, ٹو مچ کہانیاں. اور ہر کلچر میں آپ نوٹ کیجئے گا, ہر کلچر میں اپنے اپنے حساب سے جنات کے اوپر کہانیاں موجود ہیں, کسی کلچر میں زیادہ, کسی کلچر میں کم. ایک چیز کا خیال رکھیے گا, جو میں یہاں بتا دوں اس سے آگے بڑھ کر مجھ سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا, برائے مہربانی. جنات کے اوپر کوئی سوال کیو این اے میں نہیں آئے گا, صحیح؟ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے سامنے وہی کانٹینٹ رکھوں جس میں میں کلاسیکل تفسیر, قرآن اور احادیث پر سٹک کروں, اس سے آگے پیچھے میں نہیں ہوں گی. میں آپ کو جو بھی چیز یہاں مینشن کروں گی وہ سب کی سب کلاسیکل تفاسیر میں سے ہیں, جہاں ریفرنس میں قرآن اور حدیث موجود ہے. میں یہاں جتنا بتا دوں گی اس سے آگے آپ میں سے کوئی بھی جنات کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا. سمجھنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گی کہ آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی. من مارجن من نار جو آیا ہے, نار کے مارج سے پیدا کیا, مارج مکسچر کے لیے آتا ہے. آپ آگے سورہ رحمان میں ہی پڑھ لیں گی, آیت نمبر 19 میں شاید آتا ہے, مارج البحرین یلتقیان, وہاں بھی مارجا کا لفظ آیا ہے. تو مارج کا مطلب ہوتا ہے مکسچر. مکسچر کس کا؟ من نار, آگ کے مختلف مکسچر سے جنات کو پیدا کیا گیا ہے. ایسے ہی قرآن میں ایک مقام پر جنات کے لیے آتا ہے, ان کو نارن سموم سے پیدا کیا گیا ہے. ناری سموم, سین میم واو میم سے, وہ بھی ایڈجیکٹو کے طور پر آیا ہے. نار کا ایڈجیکٹو سموم, جیسے یہاں نار کا ایڈجیکٹو مارج آیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خلقت الملائکۃ من نور, فرشتوں کو نور سے بنایا گیا, پیدا کیا گیا. وخلقت الجان من مارج من نار, اور جنوں کو فلیمز کے مختلف مکسچر سے پیدا کیا گیا. وخلقت الآدم مما وصف لکم, اور آدم کو پیدا کیا گیا جس کے بارے میں آلریڈی تم کو بہت وضاحت دے دی گئی ہے. ہم جانتے ہیں یہ وہ مقام ہے یقیناً جس سے پتا چل رہا ہے کہ اس حدیث سے پہلے قرآن اور احادیث ایکسپلسٹلی انسان کی تخلیق پر بات کر چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وَخُلِقَتِ الْآدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ, آدم کو تخلیق کیا گیا جس کے لیے تم کو آلریڈی کافی ڈسکرپشن دے دی گئی ہے. تو شیطان یا جنات, ان کو آگ سے بنایا گیا ہے. کیونکہ یہ آگ سے بنے ہیں, اسی لیے ابلیس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ کر آبجیکشن کیا تھا اور مذاق اڑایا تھا. جب آپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے قصے پڑھتی ہیں, اور جس میں تفصیل سے آپ کو ابن عباس کی تفسیر ملتی ہے کہ کس طرح سے احادیث واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کتنے سٹیجز میں بنایا. بعض احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فزیکل باڈی بنائی, اور اس کو ایک جگہ پہ مٹی کا تھا نا, تو آپ سوچیں اس میں تین اللازب بھی ہے, سٹکی مڈ بھی ہے, اس میں سلسال بھی ہے, اس میں ہما ان مسنون بھی ہے, اس میں تراب بھی ہے. تو اس سب کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے بعد اس کو ایک جگہ پر رکھ دیا. ابھی اس کا انٹرنل کانٹینٹ اور اس میں روح نہیں تھی. تو ابلیس کے لیے آتا ہے کہ ابلیس کبھی ناک میں سے گھستا تھا, کان سے نکلتا تھا, منہ سے نکلتا تھا, کان سے باہر آتا جاتا تھا, اور مذاق اڑاتا تھا کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے. ابلیس کو جب کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تب بھی اس نے اسی طرح سے اپنی ریسسٹ مینٹیلیٹی کی وجہ سے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کم تر ہے. خلقتنی من نارن و خلقتہ من تین, آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں. تو اس نے خود کو بہتر سمجھا تھا. ابن عباس کے مطابق جنوں کو فلیمز کے بھی ایجز سے, جو بالکل ان کے ٹاپ ایجز ہوتے ہیں, اس سے بنایا گیا ہے. अब इतनी बात तो आपको कुरान बताता है। कुछ कंटेम्पररी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस चीज को वाजे किया है आज के इंसान को बात समझाने के लिए। वो कहते हैं कि जिस तरह से इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन की तफसीर है, या जिस तरह से बाकी क्लासिकल स्कॉलर्स की तफसीर है, या जैसे कुरान कह रहा है कि उनको नारे समूम या मारिज में नार से पैदा किया गया है, तो जब आप इसको साइंटिफिकली देखते हैं तो आपको एक फिजिक्स डेफिनेशन में ये बात पता चलती है। यू कैन से कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, सिर्फ कंटेम्पररी स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहते हैं इससे पता ये चलता है कि जिन जो है वो सॉर्ट ऑफ एनर्जी से बनाया गया है। जब आग जल रही होती है तो उसके ऊपर आपको वो जो इवेपोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो आपको फ्लेम से नजर आते हैं, मूवमेंट वाइब्रेशन नजर आती है, दैट्स द एनर्जी। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि उसको एनर्जी से बनाया गया है। जैसे आज आपके और मेरे लिए चीज समझना आसान है, ये जितनी भी गोस्ट हंटर डॉक्यूमेंट्रीज अब आती हैं, काफी अरसे से आती हैं, अब यकीनन और आना शुरू हो गई हैं, या हॉन्टेड प्लेस पर जब वो जिन्नात की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया? वो क्या करते हैं, मीटर्स लेके फिर रहे होते हैं, मीटर्स के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, एनर्जीज को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसीलिए बहरहाल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, फिर जो मैं आगे बात बताऊंगी इसके बाद आपको इंशाल्लाह अगली बात समझनी आसान हो जाएगी। तो समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात पता चलती है कि जैसे कुरान और अहादीस ये बात मेंशन करते हैं कि जिन्नात स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करना उनका एक तरह से आग के फ्लेम के भी एजिस से बनना उनका एनर्जी होने को डिस्क्राइब करता है। ये सॉर्ट ऑफ एनर्जी है जिससे वो डिस्क्राइब किए गए हैं। अब फिर बिल्कुल जैसे, अब आपको बात समझ आएगी, जब ये एनर्जी है आग के भी फ्लेम के भी एजिस से बने हैं, स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करते हैं, तो अब आपके लिए समझना आसान होगा कि क्या एनर्जी वेव्स की इस वक्त एनर्जी है आपके आसपास? हम सब तो बहुत ज्यादा अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रहते हैं। वाईफाई सिस्टम, 3G नेटवर्क, 4G नेटवर्क, कॉन्स्टेंटली हमारे आसपास जो है वो वेव्स होते हैं। आपको और मुझे वो वेव्स नजर आ रही हैं? नहीं, मगर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल जैसे इन वेव्स की कोई फिक्स्ड फिजिकल फॉर्म नहीं होती। अगर आप डिटेक्टर्स भी लगाते हैं तो ये वेव्स आपको कॉन्स्टेंटली मूव होती भी मिलती हैं। इनकी फिक्स्ड फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, बिल्कुल जैसे वाईफाई सिग्नल हो, या रेडियो सिग्नल्स हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हो, या आपकी माइक्रोवेव की वेव्स हो, इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। जिनों का मामला भी ऐसा ही है, इनकी फिजिकल शेप होती है, क्या होती है वो आप और मैं नहीं समझ सकते। अब क्या होती है उस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। बिल्कुल जैसे इस वक्त में आप मुझसे पूछें कि इस कमरे में जितने भी इस वक्त 3G नेटवर्क काम कर रहे हैं उनकी क्या शेप बन रही है, आयशा मैं बता सकती हूँ? नहीं बता सकती। इसी तरह से मैं जिन्नात की शेप भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती, ठीक है? क्या आपकी 4G वेव्स आपकी छत से, दीवारों से, या आपकी वाईफाई वेव्स आपकी छत और दीवारों से क्रॉस कर जाती हैं, या उनको दरवाजा खोलना पड़ता है पहले? क्रॉस कर जाती हैं। जिन्नात भी क्योंकि एनर्जी हैं तो उनको दीवारों से क्रॉस करने में कोई बैरियर नहीं आता है, वो आराम से क्रॉस कर जाते हैं। जिन्नात यकीनन मेजॉरिटी जमीन पर फसाद फैलाकर जा चुके हैं। हाँ, इस वक्त भी मौजूद हैं, लेकिन अब खलीफा इंसान है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को प्रेजेंट किया था और फरिश्तों ने आदम अलैहि सलाम को देख कर कि अल्लाह ताला ने अगेन एक मखलूक बनाई है जिसको जिन्नात की तरह विल पावर दी है, फरिश्तों ने ये कहा था कि ये स्पीशी भी फसाद करेगी। तो वो इन्होंने इसलिए कहा था मुफस्सरीन के मुताबिक कि उनका पिछला एक्सपीरियंस था वो बहुत बड़ी सिविल वॉर जिन्नात की जमीन पर ऑब्जर्व कर चुके थे। देयर इज अ ह्यूज स्टोरी जो आपको तफसीर में मिलती है, उसके बताने का इस वक्त टाइम नहीं है। अल्लाह ताला ने ये वाजे कर दिया कि अल्लाह ताला ने जैसे इंसानों को विल पावर दी है, ऐसे ही अल्लाह ने जिन्नात को विल पावर दी है। तो अभी हमने क्या समझ लिया कि जिन्नात की को जो भी फिजिकल शेप है वो हम इंसान नहीं समझ सकते। वो शोले के फ्लेम के भी एजिस से पैदा किए गए हैं, दे आर ऑलमोस्ट लाइक एनर्जी। और जब ये किस प्रॉपर शेप पर आते हैं, इनकी कोई फिजिकल बॉडी इंसान समझ सकता है कि नहीं समझ सकता, उसके लिए मुझे और आपको जो है वो मजीद सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों इनकी फिजिकल शेप आप और मैं नहीं समझ सकते? फैक्ट समझ लीजिए, हमारी दुनिया की 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से बाहर हैं ये। आपको इस दुनिया में वही चीजें नजर आती हैं जो 3 डायमेंशनल हैं। जिन्नात 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से बाहर हैं। हाँ, टोटली इसी वक्त इस जमीन पर इंसान के पैरेलल मौजूद हैं। जितनी मखलूक इस वक्त इंसान की है, हो सकता है इससे बढ़कर जिन्नात की हो। देर इज अ पॉसिबिलिटी, हम एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं लगा सकते। अगेन, हमारे पास WHO की तरफ से डेमोग्राफिक फिगर्स जिन्नात के बारे में नहीं आए, तो हमें नहीं मालूम। बट ये पैरेलल जेनरेशन है जो इस वक्त इंसान के साथ साथ जमीन पर मौजूद है। इसीलिए सूरह रहमान में कॉन्स्टेंटली नेमतों को तकदीब के साथ रिजेक्ट करने में दोनों स्पीशीज को मेंशन किया गया है। हमारी दुनिया से ओझल है, लेकिन इनके पैरेलल सिविलाइजेशंस और इनकी सोसाइटीज जो हैं वो साथ साथ मौजूद हैं। क्या जन्नात से डरना चाहिए? आप तो अभी डर गई। जिन्नात से नहीं डरना चाहिए। अभी आपको बता दिया, इंसान को फौकियत दी गई है जिन्नात के ऊपर। जिन्नात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें, उसूल हमेशा से जो आपको उलमा देते हुए मिलते हैं, जो जितना जिन्नात से डरता है, जिन्नात उतना उसके ऊपर हावी आते जाते हैं। जिन्नात इंसान के सामने खुद को रिवील करने की सलाहियत रखते हैं। जिन्नात आपकी और मेरी वर्ल्ड में आ सकते हैं। आप जा सकते हैं जिन्नात की वर्ल्ड में? कोई है आप में से ऐसा? नहीं, इंसान जिन्नात की दुनिया में नहीं जा सकता, उनकी डायमेंशन में नहीं जा सकता। जिन्नात आपकी डायमेंशन में आ सकते हैं, आप जिन्नात को नहीं देख सकते हैं। What about them? वो आपको देख सकते हैं। जिन्नात आपको देख सकते हैं, जैसे कुरान में आता है सूरत आराफ आयत नंबर 27, इन्नहु यराकुम हुआ वकबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम। वो तुमको देखता है, ये इबलीस की बात है, इबलीस और उसकी प्रोजेनी तुमको देखती है, तुम उसको नहीं देख सकते, और वो देखती है जहां से वो चाहते हैं, वो तुमको देखते हैं। याद रखें, इस दूसरी मखलूक के साथ इस जमीन पर जमीन को शेयर करते हुए रहना और अपने आप को शैतान के जिन्नात के वसवसों से और नुकसान से बचाना, इसका वाहिद हल हमेशा से मुफस्सरीन ने यह बताया कि इंसान इल्म हासिल करे, दीन का इल्म हासिल करे। नॉलेज इज पावर। जितना आपके पास इल्म आता जाएगा, आप इन चीजों से डरना छोड़ देंगी। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये उन्हीं को डराते हैं जो इनसे डरता है। और जिन्नात ट्रिक्स करते हैं इंसानों के साथ ताकि उनको डराएं। क्यों? वो इनिशियल जेलेसी याद है, इबलीस वाली? और ये सब जिन्नात जितने भी हैं, ये उसी अब इबलीस से ही आगे चल रहे हैं। सो इनिशियल जेलेसी की बेसिस पर ये जिन्नात आपको और मुझे इस तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं कि जो डरता है ये इसको मजीद डराते हैं। जिन्नात में अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि ये जब चाहें अपने आप को इंसान के सामने एक्सपोज कर सकते हैं। जब ये हमारी दुनिया में आ सकते हैं, तो ये अपने आप को हमारे सामने एक्सपोज कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट, फिर बाकी पॉइंट पर कल बात करेंगे। जिन्नात या शैतान, ये मुर्दा लोगों की शक्ल एडॉप्ट कर सकता है। सही? फिर इंशाल्लाह मैं कल आपको तफसीर इसकी जो है वो हदीस की रोशनी में बताऊंगी। जिन्नात इंसानों की शक्ल में आते हैं, एक मुर्दा इंसान की शक्ल में भी आते हैं, जिंदा इंसान की शक्ल में भी आते हैं। लेकिन ये पॉइंट याद रखते हैं कि जिसकी शक्ल में आपको जिन मिल गया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्नात सिर्फ उस इंसान की शक्ल में आते हैं जो बुरा इंसान होता है। नॉट नेसेसरीली, जो कमजोर इंसान होता है, याद रखिएगा, जो कमजोर इंसान होता है, जिन उसकी शक्ल अडॉप्ट करके आपके किसी दोस्त, आपके किसी रिश्तेदार के पास जा सकता है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के जिन्नात और शयातीन के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें ऐसा ईमान दे कि हम अल्लाह के अलावा किसी मखलूक से ना डरें। अल्लाह ताला हमारे लिए इस जमीन पर शुक्रगुजारी से रहना आसान बना दे। अल्लाह हमें अपनी नेमतों का बेहतरीन शुक्र करने वाला बनाए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह जिनकी बीमारी फर्स्ट स्टेज में है या सेकंड स्टेज में है या थर्ड स्टेज में है या जिसकी बीमारी अभी उसके सामने नहीं खुली, अल्लाह हर इंसान को शिफाए कामिला अता फरमाइए। अल्लाह हमें सेहत और ईमान वाली जिंदगियां अता फरमाइए। अल्लाह हमें फरमा बरदारी वाली जिंदगियां अता फरमाइए। अल्लाह हमें अपनी जिंदगी में हर सांस के आखिरी लम्हे तक हर तरह की मोहताजी से महफूज रखिएगा। अल्लाह हम आपसे वो खैर मांगते हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे खैर मांगा। अल्लाह हम हर उस शर से आपकी पनाह में आते हैं जिस शर से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी पनाह में आने के लिए दुआ की। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदकाए जारिया बना दीजिए। अल्लाह हम सब का यहाँ आना और इस गैदरिंग को अरेंज करना कबूल फरमा ले। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जजाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।